أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى علیہ السلام کا یہ قصہ چل رہا ہے ابھی, اور اس قصے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جادوگروں کا جو موسى علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا, اس میں ظاہر ہے جادوگروں نے شکست کھائی, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا گیا, ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے, اور بڑی دردناک ان کو سزا دی گئی. مگر اللہ کے ہاں دیکھے وہ کیسے سرخرو ہوئے. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اگر آپ لوگ سن سکیں تو آپ ان کا قصہ پورا, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نویں پارے میں, نائنتھ پارے میں, تو آپ اس کی تفسیر سن سکتے ہیں. اور اب آگے بات چل رہی ہے کہ وہ تو ایک فیصلہ ہو گیا اس کے بعد, لیکن اس فیصلے نے دیکھیں فرعون اور آل فرعون کی کمر توڑ دی. اب بنی اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قیادت میں جمع ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان کو لے کر اب راتوں رات نکل جائیں, کیونکہ اب فرعون ان کے در پہ ہو گیا تھا, کسی طرح نہیں ان کو چھوڑ رہا تھا, کہ اب فرعون سے بس حجت تمام ہو چکی ہے, اب کوئی اور چارہ نہیں سوائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں. اب اس کے اندر اب یہاں پہ دیکھیں گے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا, اور البتہ تحقیق وحی کی ہم نے, الٰ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ کر دیا, وحی کے ذریعے حکم دیا, ان اسری بعبادی, کہ لے چلو راتوں رات لے چلو میرے بندوں کو. کون سے بندے؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کتنے تھے یہاں پہ؟ 600,000 سے زائد کہا جاتا ہے کہ 600,000 سے زیادہ تھے. اب جب وہ لے کر چلے بنی اسرائیل کو, تو رات کا وقت تھا, نکل کھڑے ہوئے, لیکن جب جتنا بھی فاصلہ طے کیا تھا اس کے بعد جب صبح ہوئی اور فرعونیوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں, تو انہوں نے ان کو فالو کیا. اب جب فالو کیا تو موسیٰ علیہ السلام سمندر تک آ چکے تھے, پیچھے فرعون اور اس کے لشکر تھے, اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا کہ اب کیا ہوگا ہمارا, تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَ, مار ان کے لیے, کیا مار؟ ان عصا جو تھا ان کا, اور ایک راستہ سمندر میں سوکا بن گیا, سوکا راستہ بن گیا. اللہ کی قدرت تھی کہ سبحان اللہ, جب یہ لوگ نکلے ہیں اور اس وقت ایسی جگہ پہ آ کے پھنس گئے جہاں پہ لگ رہا تھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے, سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یعنی وہی والا جو محاورہ وہ ہوتا ہے نا, بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیڈ سی والی بات آ جاتی ہے, کہ آگے سمندر پیچھے دشمن. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری تھی, اپنا عصا مارا تھا, تو کہا جاتا ہے کہ اس میں 12 راستے بن گئے تھے, اور راستوں کے اوپر ہوا بھی چلی, ورنہ آپ ویسے سمندر کے اندر دیکھیں قدم رکھیں گیلی مٹی ایسی ہوتی تو پیر ہی دھنس جائے, ان کے اوپر ہوا چلی, وہ راستے خشک ہو گئے, اور یہ لوگ آسانی کے ساتھ اس میں یعنی انٹر ہو گئے. اور پھر 12 قبیلے تھے, اسی وجہ سے 12 راستے بنے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے, اسرائیلی روایات ہیں, کہ جب یہ لوگ اس میں انہوں نے قدم رکھا تو اس کے بعد گھبرانے لگے کہ ہمارے ساتھیوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے. اب وہ جو بڑے بڑے پہاڑ پانی کے کھڑے ہوئے تھے دونوں طرف, ان کے اندر کھڑکیاں سی بن گئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے کہ وہ بھی ہمارے بھائی بند بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. یہ 12 قبیلے کون تھے؟ یاد ہے آپ کو سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کے جو 12 بھائی تھے, 12 بھائی تھے نا وہ, अब 12 भाइयों के आगे 12 कबीलों की ये तादाद थी जो मिस्र से निकली थी। उस वक़्त वो आ गए थे ना मिस्र, फिर यहीं सेटल हो गए। अब तकरीबन 6 लाख से भी ज़ायद थे। और फिरौन पीछे कितने लोग थे? कहा जाता है 70,000 सिया घोड़ों पे थे और 7 लाख तकरीबन और सवार थे। तो इतनी उस वक़्त बनी इसराइल को घबराहट हुई कि अब अगर पकड़े गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें कैसा रास्ता बनाया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक में कि जो अल्लाह से डरता है ना, जो मुत्तकी होता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुसीबत से निकलने का रास्ता बना देते हैं। और ये रास्ता आप देखें बना कहाँ है? समंदर में बना है। वो रब जिसका हुक्म पानियों पे भी चलता है, वो चाहे तो पत्थर के पहाड़ों की जगह पानियों के पहाड़ बना दे। सोचें खुद, वो जो समंदर था उसकी जो लहरें थी, उसका जो पानी था, दोनों अतराफ में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे पानी के पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। सारा पानी बीच में से हट गया था, दरमियान में सिर्फ खुश्क रास्ता था। अब ये पहाड़ खड़े हुए हैं, ना दाएं तरफ का पानी आता है नीचे ना बाएं तरफ का। सुभान अल्लाह, कभी किसी ने देखा ऐसे पानी को स्टैग्नेंट? जबकि ये पानी समंदर का पानी है कि कसीर तादाद में पानी है, ये पानी कैसे खड़ा हो गया जबकि बीच में कोई इसको रोकने वाली चीज नहीं है? दाएं तरफ के पानी को किसने रोका? बाएं तरफ के पानी को किसने रोका? और अल्लाह ताला जब किसी चीज को रोकना चाहता है ना, जब पानियों में आड़ बना देता है तो वो आड़ नजर नहीं आती है। अल्लाह ताला ने कहा बाइना हम बरजख हम ला या बगियान, उनके दरमियाना वो पर्दा है, बरजख है, तुम्हें नजर नहीं आता वो। अब सोचें इस रास्ते से गुजरने वालों की हालत क्या होगी, क्या फीलिंग्स होंगी। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया जब कि ला तखाफ दरकन, ना तुझे खौफ होगा पा लेने का, वला तख्शा और ना तू डरेगा, यानी ना ये डर होगा कि पीछे वाले आके मुझे पकड़ लेंगे, हमें दुश्मन आके दबोच लेगा, और ना ही ये डर होगा आगे का कि जो पानी है समंदर है इसका ये हमें ना डबो दे। तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने देखी फिर कैसी हिफाजत करी कि ये लोग बीच में से आराम से गुजर गए। और अपनी जिंदगी में हम यही बात सीखते हैं इस आयत से कि अल्लाह ताला रास्ते बनाता है मगर उसके लिए जो अल्लाह से डरने वाला होता है। और जब अल्लाह ताला हिफाजत करता है ना, तो उसकी हिफाजत ऐसी होती है कि इंसान जब आगे समंदर हो और पीछे दुश्मन हो, ऐसे हालात में भी घिर जाए जहाँ पे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ से खुलेगा, अल्लाह ताला वहाँ से इंसान के लिए मुसीबतों के समंदर आगे हों, मुसीबतें और परेशानियाँ पीछे हों और इंसान घिरा हुआ है उनके अंदर, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है। फिर ना फिरौन पकड़ सका और ना समंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे वक्त में, आपको पता है ये सूरत जब नाजिल हुई तो बड़ी ही मुश्किल वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दिलाई कि देखो जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो जाए उसको फिर किसी चीज़ का खौफ नहीं करना चाहिए, फिर उसके लिए तो समंदर भी फट जाते हैं। फअतबअहुम फिरऔन बिजुनूदिही, तो पीछे आया उनके फिरौन अपने लश्करों के साथ। अब ये जो फिरौन जब उठा और उसने लश्कर भगाए अपने साथ, खुद भी और सब को लिया साथ, हर घर के अफराद देखें, लोगों को सब जमा किया, अपनी कौम के लोगों को बड़ा पेचोताप खाने लगा। उसने कहा पहले तो एक वहाँ पे मुझे हरा दिया, अब इनको भी लेके निकल गया। अब सोचें कितना गैज़ो गज़ब में होगा, भरे स्टेडियम के अंदर उसको अब शिकस्त का सामना करना पड़ा, भरे मजमे में बेइज्जती हुई, अब बनी इसराइल भी हाथ से निकल रहे। तो उसने तो हर तरफ से लश्कर जमा किए, जमा करके पीछा करने लगा। अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि बनी इसराइली इसमें से गुजर रहे हैं और समंदर खड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा हम भी गुजर जाते हैं। उन्होंने उनके पीछे ही अपने घोड़े भी डाल दिए समंदर के अंदर और चलते चले आए। जब सारा लश्कर, अब जाहिर है समंदर को छोटा बात तो नहीं है ना, जब सारा लश्कर बीच में पहुंच गया, फगशिया हूँ मिनल यमी मा गशिया हूँ, तो ढांप लिया उनको समंदर में से जिस चीज ने ढांप लिया उनको, समंदर की लहरों में से लहरों ने उनको ढांप लिया। यानी मीनल यम, मीन से, यानी बाज, पूरा समंदर नहीं आया था, बाज उसका हिस्सा ही काफी था इनके लिए, उसने ढांप लिया इनको। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि बनी इसराइल को बचा लिया इनसे, दुश्मनों से, बल्कि दुश्मन को भी उनकी आंखों के सामने गर्क कर दिया, डबो दिया। अब वो जो पानी के पहाड़ खड़े हुए थे दोनों तरफ, वो मिल गए। फगाशिया हूं मिनल यम्मी मा गाशिया हूं, ढांप लिया उनको समंदर में से। समंदर को इतनी अकल कहां से आ गई कि इनको तो जाने देना है और ये जो दूसरे आ रहे हैं इनमें से किसी एक को भी बचने नहीं देना। ये समंदर को किसने बताया? समंदर में इतनी अकल कहाँ है? पहले लोगों पे तो चढ़ाई की ही नहीं, दूसरे पे करनी है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। असल में जब रब का हुक्म आता है ना, तो ये सारी कायनात जो है ना, अल्लाह ताला की फरमा बरदार है सारी कायनात, और सारी कायनात अपने रब का हुक्म भी मानती है और उन्हीं से मोहब्बत करती है जो रब के फरमा बरदार है। हम जब कभी अल्लाह के नाफरमान होते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि सभी अल्लाह के नाफरमान हैं। इंसानों को देखते हैं ना, अपने जैसे इंसानों को, तो सोचते हैं सभी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, हमने तोड़ा तो कौन सा ऐसी बड़ा कारनामा, कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, कौन सी ऐसी बड़ा गुनाह हो गया। हालांकि सारी कायनात अल्लाह के हुक्म मानने वाली है, और जब आप अल्लाह का हुक्म तोड़ते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं। पूरी कायनात एक डायरेक्शन में चल रही है, आप ऑपोजिट में चलने लगते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि अल्लाह का हुक्म मानूंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, कोई मेरा पूछने वाला नहीं होगा, लोग सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। हालांकि इसके उलट बात है, जब आप अल्लाह के नाफरमान होते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि पूरी कायनात दूसरी तरफ है, अल्लाह की फरमाबरदारी में लगी हुई है और आप अकेले नाफरमान हैं। और जब आप अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, आप पूरी कायनात के साथ होते हैं, आपको कोई इंसान भी ना पूछे। तो ये याद रखें कि मेरे साथ फरिश्ते हैं, मैं उनकी सफ में हूँ, वो भी अल्लाह के फरमाबरदार, मैं भी, मैं उनके ग्रुप में हो गई। ग्रुप बाजियां करने का शौक है ना, तो इसमें ग्रुप बाजियां करा करें। मेरा ग्रुप कौन सा है? वो जो पूरी कायनात का ग्रुप है, जो फरिश्तों का ग्रुप है, जो जमीन आसमान का ग्रुप है, जो समंदरों का ग्रुप है, जो चरिंद परिंद का ग्रुप है, जो सब जानदारों का, बेजानों का ग्रुप है, उसमें मैं हूं। तो पानी भी पहचानते हैं कि रब का नाफरमान कौन है और फरमाबरदार कौन है। अल्लाह ताला ने खुद पहचान दी है इनको, कायनात की सारी मखलूकात नाफरमानों को पहचानती हैं। इसीलिए तो एक हदीस में आता है कि समंदर कहते हैं, जब इंसान के गुनाहों को देखते हैं तो समंदर कहते हैं, या अल्लाह हमें इजाजत दे तो हम फट जाएं, इनको डबो दे, सॉरी चढ़ जाए इनके ऊपर, इनको डबो दे। और जमीन कहती है कि या अल्लाह मुझे इजाजत दे तो मैं फट जाऊं। इंसान के गुनाह इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये इतने गैज़ो गज़ब में आते हैं कि ये अल्लाह की नाफरमानियां क्यों कर रहा है इंसान, कि समंदर चाहते हैं कि चढ़ाई कर दें, तो समंदरों को क्या पता, जमीन को क्या पता। अगर इसका मतलब है इस जमीन ने अल्लाह के नाफरमानों को भी चलने की इजाजत दी हुई है, तो अल्लाह के इज़न से दी हुई है। ये समंदर भी अगर रुके हुए हैं ना अपनी जगह पे, अपनी हदों में, तो अल्लाह के हुक्म से रुके हुए, वरना अल्लाह के नाफरमानों की जगह कायनात में कहीं नहीं है। जब ही तो हशर के मैदान में लोग खड़े होंगे तो जहन्नुम कहेगी मुझे छोड़ दो और मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। मैं इन एक एक को निगल जाऊं, वो गैज़ और गज़ब उसका किस लिए होगा, चीखो पुकार किस लिए होगी। वो कहेगी मुझे छोड़ो, मैं इन सब को खा लूंगी, ये अल्लाह के नाफरमान। जब आप अल्लाह के नाफरमान होते हैं ना, याद रखें बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं। ये तो अल्लाह की रहमत ही होती है कि आप ज़मीन पे चलते फिरते हैं, वरना सारी ज़मीन, आसमान, समंदर, हर चीज़ इंसान के ख़िलाफ़ है, इंसान को जगह नहीं देना चाहती। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ये जब बनी इसराइल को लेकर निकल गए, फिरौन का लश्कर एंटर हुआ एंड बीच में पहुंचे, दोनों तरफ की लहरों को कम हो गए, अपनी पहली जगह पे, अपनी पहली हालत में आ जाओ। यूं जो कहता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह ताला ने उस की रबूबियत का दावा कैसे गर्क कर दिया, कैसे उसको डबो के रख दिया। कैसे देखें जो खुदा होने का दावा करने लगते हैं ना, कैसे मिट जाया करते हैं। उसने तो ये सोचा था जैसे ये निकल गए मैं भी निकल जाऊंगा, वो समझता था समंदर मुझे भी ऐसे ही रास्ता दे देगा। हालांकि दुनिया में अल्लाह के नाफरमानों के लिए कोई जगह नहीं है। ये नहीं समझा कि जब अल्लाह की तरफ से मोहलत खत्म हो जाती है ना, ये तो उसकी मोहलत थी कि वो चल फिर रहा था, अल्लाह की तरफ से मोहलत खत्म हो जाए, कोई जगह बना नहीं देती इंसान को, कायनात का सारा निजाम उसके खिलाफ चलने लगता है। ये तो अल्लाह ताला की रहमतें हैं, ये तो उसके शाने गफारी है, ये तो उसका हिल्म है, ये तो उसका सबर है कि वो ऐसे इंसानों को भी इजाजत दे देता है। चलोगे भी, फिरोगे भी इसी जमीन में भी, खाओ पियोगे भी उसका ही दिया हुआ, पहनोगे भी उसी का दिया हुआ, सांस भी उसी की हवा से लोगे, उसकी सारी ही नेमतें तुम इस्तेमाल करोगे, उसकी नाफरमानियां भी करोगे, फिर भी वो तुम्हें इजाजत देगा कि तुम फलो फूलो, तुम रहो सहो। ये अल्लाह ताला का ही ज़र्फ है। वो अदल्ला फिरऔनु, और भटका दिया फिरौन ने किसको, कौमहू, अपनी कौम को। वो खुद तो भटका ही था, साथ अपनी कौम को भी भटका दिया। वमा हदा, और ना रास्ता दिखाया, ना खुद उसने रास्ता देखा ना अपनी कौम को दिखाया। ये बड़ी ही डरा देने वाली आयत है। देखें इंसान खुद भटके ना तो बात एक अलग है, एक नुकसान है, मगर बाज लोग, क्योंकि वो लीडर होते हैं, क्योंकि लोग उनकी तरफ देखते हैं, लोग उनको एनवी करते हैं, रश करते हैं उनके ऊपर, लोग उनको अपना हीरो समझते हैं, वो भटकने लगते हैं ना तो उनके पीछे बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। उसने अपनी कौम को भी शिर्क के रास्ते पर लगा दिया, उसी ने अपनी कौम को ना ईमान लाने दिया मूसा अलैहिस्सलाम पे, सीधे रास्ते से हटा के वो ही अपनी कौम को भटका के दूसरे रास्ते पे लेगा। अगर इसको फिजिकल सेंस में देखें, पहले आपको इसको फिजिकल सेंस में देखें, हिस्सी माना इसका देखें, तो क्या माना बनता है, अदल्ला फिरऔनु कौमहु, उसने अपनी कौम को भटका दिया। कैसे, फिजिकल सेंस में देखें, हर घर से, हर हर अपनी कौम को घरों से, महलों से, आरामगाहों से, चश्मों से निकाल के कहाँ लेके गया, चलो उनका पीछा करें बनी इसराइल का। किस लिए ले गया था, समंदर में डबोने के लिए। तो उसने अपनी कौम को भटका दिया और रास्ता नहीं दिखाया, सारी कौम उसके पीछे चल पड़ी और सारे के सारे ही डूब गए। तो ये अगर आप हिस्सी मानो में ले, अच्छा दूसरा इसका माना अगर ले तो देखें, खुद तो गुमराह हुआ, दूसरों को भी रास्ते पे नहीं आने दिया, हक के रास्ते से हटा दिया, क्योंकि कौम अंधाधुंध फॉलो कर रही थी इसको, अंधाधुंध। और देखें अगर आप फिजिकल सेंस में भी देखें, जब ये समंदर की तरफ ले जा रहा था, देखें उस वक्त भी ऐसे अंधे हुए हुए थे कि उन्होंने से ये नहीं किसी ने कहा कि भाई ये ना हो कि पानी वापस आ जाए, हम गर्क हो जाएं, सब उसके पीछे अंधाधुंध चलने लगे, वो खुद भी डूबा, इन सारों को भी डुबो दिया। और अगर आप मानवी सेंस में देखें तो देखें खुद तो वो गुमराह हुआ था, सारी कौम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, इसके वो बस फॉलो करते रहे। वो कहता भी था, कुरान में ही आता है कि वो कहता था कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ ले जा रहा हूं, मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर रहा मगर सिर्फ सीधे रास्ते की तरफ। तो जिन्होंने इसको फॉलो किया वो भी उसी रास्ते पर चले गए। आप देखें जितने भी गुमराह कुन लीडर होते हैं दुनिया में, सभी यही तो कहते हैं हम आपको बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है। कोई ये थोड़ी कहता है कि मैं गलत हूं तो आप मेरे पीछे आ जाओ, आप तो यकीन कर लेते ना, आंखें बंद करके अंधाधुंध चल पड़ते। नहीं, वो तो ये कहते भाई वो कौन कहेगा आपको कि मैं गलत हूं और मेरे पीछे आ जाओ, कोई थोड़ी ऐसे कहेगा। ये तो इंसान को अपनी अकल खुद इस्तेमाल करनी है, अल्लाह ने आपसे हिसाब लेना है, और इसलिए क्योंकि आपको भी अकल दी गई थी, आपको अकल यही दी गई कि आप अंधाधुंध किसी को फॉलो मत करें। लेकिन अगर आपने अपनी अकल एक साइड पे रख दी और अंधाधुंध फॉलोइंग शुरू कर दी, ब्लाइंड फॉलोइंग, ब्लाइंड फॉलोइंग की तो कहीं भी गुंजाइश नहीं है। जिसको फॉलो करो सोच समझ के करो। क्यों क्यों इतना ज़रूरी है कि सोच समझ के किसी को फॉलो किया जाए? इसलिए क्योंकि जिसको भी आप फॉलो करेंगे क़यामत के दिन आप उसी के साथ होंगे, उसी को फॉलो करते हुए वहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पर जिसको फॉलो कर रहे हैं ना वहाँ पर भी उसी को फॉलो करेंगे। तो वहाँ पर अगर वो जा रहा हुआ जहन्नुम की तरफ तो वहाँ पर फिर पीछे पीछे उसके जहन्नुम में, और अगर वो जा रहा हुआ जन्नत की तरफ तो पीछे पीछे जन्नत में। कितनी ज़रूरी है कि इंसान जिसको फॉलो करे फिर सोच समझ के करे, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया का मामला नहीं है, ये आखरत का भी मामला है, ये सारी आपकी उस जिंदगी का मामला है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अच्छा, हमारा क्या ख्याल होता है, हमारी अमूमी थिंकिंग क्या है, आमियाना सोच वो ये होती है कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा कोई नेम है, बिग नेम, बिग नेम्स भी तो बहुत होते हैं ना, और बिग नेम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अवामुन नास को जो आम लोग होते हैं उनका जो लेवल होता है अकल का, वो बस किसी की ज़रा सी भी तकरीर सुनेंगे, किसी की ज़रा सी बात सुनेंगे, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, हाँ वो फलां बहुत धुआंधार तकरीर करता है उससे इम्प्रेस हो के और बस अंधाधुंध फॉलोइंग शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं वो फलां बहुत बड़ा नाम है उसका, वो फलां वो तो टीवी पे भी आता है, वो फलां वो तो हुकूमत में है, वो फलां वो तो इतना बड़ा अकलमंद है, आखिर भला उसे क्या नहीं मालूम होगा कि सही क्या और गलत क्या, भला वो कोई बेअकल है? अब यहाँ पे भी तो इसको फिरौन को कहते होंगे इतना बड़ा बादशाह, आखिर हम उसकी ना माने, आखिर भला उसमें कोई समझ नहीं होगी, ऐसे ही तो नहीं इतना बड़ा बादशाह बन गया। और यही सोच के तो हम अंधाधुंध फॉलोइंग शुरू कर देते हैं, स्टेटस, दुनिया का स्टेटस देखते हैं और सोचते हैं बस इसके पीछे ब्लाइंडली चला जा सकता है। हालांकि अगर ब्लाइंडली आप किसी के पीछे चल सकते हैं, कान खोल के सुन ले, किसी के पीछे अगर आप ब्लाइंडली चल सकते हैं वो सिर्फ एक ही ज़ात है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिनकी ब्लाइंड फॉलोइंग हो सकती है। क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो खताकार हैं, चाहे वो कोई भी है, कोई बड़े से बड़ा उस्ताद है, कोई बड़ा से बड़ा आलिम है, कोई बड़ा से बड़ा फाजिल है, कोई किसी को बुजुर्ग, कोई औलिया अल्लाह है, मगर सब इंसान है, कोई भी गलतियों से पाक नहीं है, कोई मासूम नहीं है गलती से, गलती सबसे हो सकती है। तो ब्लाइंड फॉलोइंग अगर टोटली किसी को फॉलो किया जा सकता है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, आपकी बात को, आपके तरीके को हम एक तरफ रखते, दूसरी तरफ किसी बुजुर्ग का, किसी टीचर का, किसी और का, किसी इमाम का, किसी का तरीका दूसरी तरफ, और हम उसको ज़्यादा दिल से पसंद करें और उसके पीछे ज़्यादा भागें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़ दें, तो फिर याद रखें क़यामत के दिन भी आप उसी के पीछे होंगे। अगर आज आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो किया तो कोई डर नहीं है, उस दिन उन्हीं के पीछे चले जाएंगे, हमें जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने तो इनको फॉलो किया, या अल्लाह जिनको तूने कहा था कि इनकी इताअत करो, फिर जहाँ वो जाएंगे इंशाल्लाह हम भी वहीं उनके पीछे पीछे होंगे। और जिसने किसी और को फॉलो किया तो वो उनके पीछे होगा। तो देख लें कि हम आज किसके पीछे जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बेहतरीन तरीका किसका है, सहाबा कराम का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, हमने इस जो सीक्वेंस था इसको ही छोड़ दिया ना, हमने कहा वो फलां ये कहता है, फलां ये कहता है, हमें اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا کہ سنت کیا ہے. نہیں, وہ تو آج تک ہمارے پاس صحیح حدیث ہی نہیں پہنچی, اس لیے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آج ہم حدیثوں کو اور ان کو تو چھوڑ چکے ہیں, مگر ہاں اندھا دھند فالوئنگ کرنے میں بہت تیز, کیونکہ ہم ظاہر پرست ہیں نا. جو سامنے ظاہر دیکھ لیا, کسی کو پاپولر دیکھا, اس کے پیچھے چل پڑے کہ وہ فلاں بہت پاپولر ہے, اتنے لوگ آخر اس کے پیچھے جا رہے ہیں, کوئی پاگل ہیں وہ لوگ, تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. یہ کیا کرائٹیریا ہوا؟ یہ کوئی میزان ہے کسی کو جانچنے کا کہ فلاں بہت پاپولر ہے اور آپ اس کے پیچھے اندھا دھند چل رہے ہیں؟ وہ فلاں لوگ کر رہے ہیں, اگر وہ یہ چیز سعودی عرب میں ہو رہی ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یا فلاں ہے, وہ اتنی بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں تو اس لیے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. کہیں پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ان کی اطاعت کرو, ان کی اتباع کرو, فالو کرو ان کو, باقی کسی کو نہیں آپ کر سکتے. اور کسی انسان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو وہ یہی سوچ کے, اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے تو تب اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات کو. لیکن پھر بھی ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ میں سنت کی پیروی کروں, یہ نہیں کہ میں اس بندے کے طریقے کی پیروی کروں, کیونکہ وہ بندہ بھی سنت کو ہی فالو کر رہا ہے, اس لیے میں بھی سنت کو ہی فالو کر رہی ہوں. تو اس چیز کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ کی خدا کے لیے اس زندگی کا معاملہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونی. اس لیے آج اگر غلط چوائس کر لی تو پھر واپس مڑ کے نہیں آ سکتے. آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو عدل فرعون قومہ, فرعون نے اپنی قوم کو بھٹکا دیا. اور بہت سارے لیڈر آتے ہیں اس دنیا میں کہ جو قوموں کو بھٹکا کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس دن بھی فرعون کیا کہاں پہ ہوگا؟ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور وہیں لیڈ کرے گا اپنی پوری قوم کو. آگے آگے وہ ہوگا جیسے یہاں پہ پانی کے سمندر میں لے کے ڈبا دیا نا, وہاں پہ جہنم کے سمندر میں لے کے ڈبا دے گا ان کو. آگ کی طرف بھی ان کا لیڈر ہوگا, آگے آگے جا رہا ہوگا, پیچھے پیچھے ساری قوم جہنم میں جا کے گر جائے گی. اس لیے ایک ہی راستہ اپناؤ, اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. سب راستے چھوڑ دو, ہاں جو راستہ ان کی سنت کے مطابق ہے وہ راستہ ہمیں 100 دفعہ قبول ہے, وہ راستہ سب سے اچھا راستہ ہے. مگر جو راستہ ان کی سنت سے ہٹتا ہے, وہ چاہے کتنے ہی بڑے آدمی کا نام ہے اس راستے پر, کتنا ہی بڑا آدمی اس راستے پر چل رہا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے کسی اور کی ذات نہیں. وہ ذات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے, تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر تم نے کسی کو نمونہ بنانا ہے, کسی کو اگزامپل بنانا ہے اپنے لیے, کسی کی مثال کو فالو کرنا ہے, تو وہ ان کی ذات ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام نہیں دیا. وما ہدا, اور اس نے نہیں رہنمائی کی. اس نے, وہ چاہتا تو اپنی قوم کو راستے پر لا سکتا تھا, خود بھی ایمان لے آتا, ساری قوم اس کے پیچھے ایمان لے آتی. کیونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوا کرتے تھے, جو بادشاہ کرتا تھا وہ ہی پیچھے کرتے تھے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کی طرف کیوں نہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو, یہ کیوں کہا فرعون کے پاس جا کے تبلیغ کریں, یہ آپ نے نہیں سوچا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا, ساری قوم اس کو اندھوں کی طرح اسی کو اپنا لیتی تھی. تو اگر فرعون ایمان لے آتا, خود بخود ساری قوم ایمان لے آتی, ان کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, صرف ایک آدمی کے پیچھے ساری قوم تھی. لیکن اس نے دیکھا ہے کیسا اپنی قوم کو اس دنیا میں بھی غرق کرایا اور وہاں پہ بھی غرق کرا دے گا. آج آپ کے لیڈر چاہے کوئی سیاست دان ہو, چاہے کوئی اور عالم ہو, چاہے کوئی ہو, صرف نعرے نہ دیکھیں کہ بھئی ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں, ہم تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ہم اس حق پہ ہیں. آنکھیں کھول کے رکھیں, اپنی عقل استعمال کریں. چلو سیاست میں تو پھر بھی پوچھ تو اس میں بھی ہوگی, لیکن چلو پھر بھی ایک یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی, ہمیشہ کی زندگی تو داؤ پہ نہیں ہے نا. मगर दीन के मामले में तो हमेशा की जिंदगी आप दांव पे लगा देते हैं जब आप दीन में अंधाधुंध फॉलोइंग शुरू कर देते हैं। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातिब है। कौन से बनी इसराइल को? हो सकता है उस जमाने के बनी इसराइल भी हों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल जो यहूदी थे उनको भी अल्लाह ताला याद दिला रहा है, अपने एहसानात अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं ना। तो हो सकता है उस ज़माने के बनी इसराइल को भी ये कहा हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब ये आयतें उतर रही थी तब भी उनको खिताब का किया हो कि उनको याद दिलाया हो एहसानात का। और हो सकता है आज तक के बनी इसराइल को याद दिलाया जा रहा है। कद अंजैनाकुम, देखो हमने निजात दी तुमको, किससे? मिन अदुविकुम, तुम्हारे दुश्मन से। किसने निजात दी थी उस वक्त जब तुम कमज़ोर थे और अपने घरों से भागे हुए थे? आगे समंदर था, पीछे दुश्मन था, किसने तुम्हारे दुश्मन को गर्क किया? अपने इनके पास की तो बात नहीं थी। और वाकई बनी इसराइल बाद तक इस एहसान को याद करते थे और इस दिन शुक्राने का रोज़ा रखा करते थे ना, सबको याद था, बाद तक याद था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तक याद था, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे तो देखा था कि यहूदी इस दिन का रोज़ा रखते हैं 10 मुहर्रम का, और कहते थे इस दिन फिरौन गर्क हुआ था। तो पहला एहसान अल्लाह ताला ने याद क्या दिलाया? तुम्हारी आंखों के सामने डबोया उसको। अल्लाह ताला का इख्तियार देखिए ना कि कैसे दबी हुई पिसी हुई कौम को उठाया अल्लाह ने और उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनके ताकतवर दुश्मन को डबो के रख दिया। ये इससे भी किसी कौम का मोरल हाई होता है ना, ये एक पिसी हुई कौम, गुलाम कौम, उनके सामने उनको दिखा दिया कि इतना बड़ा बादशाह देखो कैसे वर्क किया जा रहा है, जिसने इनको सदियों से गुलाम बनाया हुआ था, तो इससे उनका मोरल हाई होता है। और देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या दिया, दूसरा एहसान, ववअदनाकुम जानिब तूर अल अयमन, और देखो वादा दिया तुमको दूर की दाएं जानिब, दूर की दाएं जानिब कह सकते हैं या फिर फलस्तीन की दाएं जानिब कह सकते हैं, कि वहां का अल्लाह ताला ने वादा दिया था, वअदनाकुम, वादा दिया तुमको, यानी मूसा अलैहि सलाम से बेसिकली तो वादा किया था कि आप आए तूर की दाएं जानिब और वहां पे आपको शरीयत दी जाएगी, जब इनको तौरात मिलने के लिए बुलाया था, तौरात देने के लिए मूसा अलैहि सलाम को, उसकी तरफ इशारा है। तो अल्लाह ताला का दूसरा एहसान क्या है कि उसने तुम्हें शरीयत दी, तो इसका मतलब है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा एक एहसान होता है कि किसी कौम की हिदायत के लिए, उनको उनको गाइड करने के लिए अल्लाह ताला शरीयत, जो जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप ज़िंदगी गुजारें वो अहकामात अल्लाह ताला आपको दे दें, तो ये भी अल्लाह का एहसान होता है। हमारे पास भी आई है ना शरीयत, ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, चाहे आप उसको एहसान समझें कि नहीं समझें, चाहे तो आप इसको मुशक्क़त समझिए अपने लिए, मुश्किल समझिए, एक मुसीबत समझिए, क्या मुसीबत है कि हमें ये करना पड़ रहा है, लेकिन असल में ये अल्लाह की तरफ से एहसान है। हमारे ऊपर भी ये एहसान हुआ है, उनके ऊपर भी हुआ था, उनको याद दिलाया जा रहा है, तुम्हें देखो तूर की दाएं जाने बुलाया गया था, वादा दिया गया था, और तुम्हें ये शरीयत दी गई, तुम्हें ये किताब दी गई, ये बहुत बड़ा एहसान है। और किस जगह पे दी गई थी? तूर अल अयमन, तूर की दाएं जाने। जब कभी मुलाकात होती है तो उसका मकाम भी फिक्स किया जाता है ना कि वहाँ पे मुलाकात की जाए, तो अल्लाह ताला ने मकाम का तायुन किया था, वादा किया था कि फलां मकाम पे मुलाकात होगी। पहली मुलाकात का तो जिक्र आपने पहले पढ़ चुके हैं ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के साथ बातचीत हुई थी। तो अब की दफ़ा जब बनी इसराइल को लेकर आ गए हैं तो अल्लाह ताला ने फरमा दिए कि फलां जगह पे आपके साथ बात होगी दूर के दाएं जाने। और ये वादा किस चीज़ का था? वादा कि शरीयत मिलेगी। ताकि लोग इसको कबूल करके अपनी ज़िंदगियों में इसको नाफिज करें और सारे जहान में अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। और फिर तीसरा एहसान याद दिलाया, वनज़्ज़लना अलैकुम अल-मन्ना वस्सलवा, और नाजिल किया हमने तुम पर मन और सलवा। अब आप देखें मन और सलवा क्या था? मन था एक मीठी सी चीज, समझ ले स्वीट डिश जिसको कह सकते हैं। रात को सोते थे तो सुबह को पत्तों के ऊपर ना धनिया के दानों की तरह छोटे छोटे दाने होते थे जो स्वीट डिश के तौर पे जमे होते थे। वो वहां से उतार उतार के तो ये लोग खा लेते थे। भी तो मुसलसल ट्रैवलिंग में है ना, ये लोग एक जगह तो नहीं बैठे हुए। अब देखिए जरा जहन में लेकर आए कि इन्होंने समंदर पार कर लिया। अब समंदर पार करके जब इस तरफ को पहुंचे तो अब क्या था वहां पे? डेजर्ट था, एक मैदान था, ठीक है, मैदान थी। अब वहां पे ना तो कोई दरख्त था, ना कोई पहाड़ था, ना कोई खेत थे कि जहां से वो कुछ खा सके, ना कोई गार थे कि वहां पे यानी पनाह लेने। अब ना घर बार है, ना खाने पीने को कुछ है। अल्लाह ताला ने इनके लिए खाने का इंतजाम किया, ऐसा ऐसी मील मैनेजमेंट की इनके लिए। और देखिए दो चार लोग नहीं थे, लाखों लोग थे, लाखों। ऐसी मील मैनेजमेंट थी, ना ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी, ना कोई लाने का झंझट, ना खरीदने का, ना मंगवाने का, ना स्टोरेज का कोई मसला, ना डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मसला। अल्लाह ताला के मेहमान बन के यहाँ पे रहो। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए क्या इंतज़ाम किया? सिर्फ पानी का इंतज़ाम नहीं किया, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने आसाम आ रहा था तो चश्मे निकले थे, सिर्फ पानी का इंतज़ाम नहीं किया, अल्लाह ताला ने इनके खाने का भी इंतज़ाम किया। अंदाज़ा लगाएं, अगर पानी का ही सिर्फ इंतज़ाम किया जाता 6 लाख के लश्कर के लिए तो कितने टैंकर मंगवाए जाते? और क्या मुमकिन था इस वक्त के लोगों के पास कोई डीप फ्रीज़र होता या कुछ होता कि कोई ट्रकों पे खाना मंगवाया जाता तो स्टोर कर लेते, या कोई पैक करने का इंतज़ाम था? और सर पे क्या थे? बादल थे। अगर घर नहीं है तो बाहर भी रह सकते हैं आराम से, यानी कोई धूप से इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि कोई सख्त धूप हो, सख्त गर्मी हो कि इनको रहना मुश्किल हो जाए। और सलवा क्या था? बटेरे थे, बटेर का गोश्त खाते थे, परिंदे थे। तो अल्लाह ताला ने नमकीन का भी इंतज़ाम किया, मीठे का भी। और एक जगह रह के नहीं कि सिर्फ एक जगह पे था, ये तो सफ़र करते जा रहे थे, चलते जा रहे थे आगे आगे। अब आपको पता है ये कितने अरसे फिरे थे? 40 साल तक, एक दिन दो दिन की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसा फूड का इंतज़ाम किया। आप देखें और आप फिर देखें कि खाना कितना चाहिए होता होगा इनके लिए, बटेरे जितना पने और सब ने खाना हो तो डेली की कंजम्पशन होगी। अंदाज़ा लगाएं आप कितना बटेर आता होगा, कितना सलवा पहुंचता होगा। सलवा के तो झुंड के झुंड आते होंगे, ऐसे लगता होगा बादलों का साया हो गया, इतने परिंदे। आप देखिए यहाँ पे कोई जलजला आ जा, माफ करे, या कोई जंग की वजह लोग रहे, हमने देखा है ना पूरी दुनिया से जहाज भर भर के आते हैं डोनेशंस लेके, जो भी फूड के भी और फूड आइटम्स भी, ब्लैंकेट्स हैं, पानी है, फलां हैं, दवाइयाँ हैं, ये वो क्या क्या चीज़ें हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता इंसानों के लिए। हज़ारों के ही अगर रेफ्यूजीज हों, हज़ारों की तादाद में, तब भी नहीं पूरा पड़ता। और कहाँ 6 लाख लोग से ज़ायद। तो ये ऐसा अल्लाह ने क्यों इंतज़ाम किया था? इसलिए ताकि इनको अपनी इन बेसिक नीड्स के पीछे भागना ना पड़े और ये इनकी तरबियत की जा सके आगे, जिस तरह से जो इनसे काम लेना था ना, अल्लाह ताला ने इनकी तरबियत करनी थी, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस वक़्त की ये उम्मत थी जो कि सारी उम्मतों पर फजीलत रखने वाली थी, उस वक्त ये चोजन पीपल थे, चुने हुए लोग थे। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए इतना क्वालिटी फूड दिया और क्या फरमाया, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, खाओ तुम पाकीज़ा में से जो हमने तुमको दिया। अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी फूड इनको दिया, पाकीज़ा फूड इनको दिया, वरना क्या खाते वहाँ पे, चंद दिन में भूखे प्यासे मर जाते। तो और फरमाया कि खाओ इसमें से, अल्लाह की तरफ से इजाज़त है पाकीज़ा खाने की। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम में भी कोई खाने के ऊपर कोई पाबंदी है, या खाना नहीं खाना चाहिए, या फाकों से रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी, हमने पहले पढ़ा मैंने सूरह बकरा में भी, खाओ और पियो, और ये पढ़ा है हमने ना, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो रिस्क दिया हमने तुमको। वला ततग़ौ फी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, हद से ना बढ़ना। ततग़ौ सरकशी क्या होती है? हद से ज़्यादा बढ़ जाना ना। हद से बढ़ना कैसे होता है? हद से बढ़ने में क्या क्या चीज़ आती है? कि एक तो ये बात कि ये ना हो कि तुम यानी तवाज़ुन ना रखो, इतदाल ना रखो, ये हद से बढ़ना हो गया ना। शुक्र अदा करो जो तुम्हें मिला, इसराफ भी ना करो कि ऐसा ना हो कि हद से ही ज़्यादा खाने शुरू हो जाए, बस काम ही खाना पीना रह जाए, जो कि जैसे आजकल हमारे यहाँ है कि हम भी तो खाने के मामले हद से बढ़ गए ना, और इसी वजह से ज़िंदगी का देखें तवाज़ुन ही ख़राब हो गया। इबादत पे भी इसका असर होता है और भी बाकी चीज़ों पे, क्योंकि अगर आपकी सारा यानी आपका फोकस खाना पीना हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर सारा दिन बस ग्रोसरियाँ करना, उनको संभालना, उनको रखना, स्टोर करना, और फिर उसके बाद उनको पकाना और फिर सर्व करना, फिर बर्तन उठाना, फिर धोना उनको, फिर खा के उसके बाद फिर सुस्ती अलग आती है, नींद अलग आती है, फिर पका पका के वैसे भी इतने थक जाते हैं कि उसके बाद फिर लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर पकाना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखें एक आम औरत की ज़िंदगी को ना, हमारे स्पेशली सोसाइटी में, उसका सारा दिन सुभान अल्लाह मैं देखती हूँ ज़िंदगी में, ऐसे लगता है कि ये दुनिया में आए हैं खाने पकाने के लिए बस। एक औरत की ज़िंदगी, आप एक आम हमारे मुल्कों में एक आम औरत की ज़िंदगी देखें, क्या ज़िंदगी है। सुबह उठते हैं, पका रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर उसको समेट रहे हैं, फिर धो रहे हैं, फिर ज़रा थोड़ी देर के लिए इधर उधर थोड़ा कुछ काम किया, उसके बाद फिर दोपहर की तैयारी शुरू हो गई, और उसकी सोच विचार में जितनी देर कुछ और काम भी करें तो सोच क्या रहे हैं, आज पकाना क्या है। अच्छा फिर वो पकाने लग पड़े, फिर वो पकाया, फिर सबको खिलाया, फिर उसके बाद सबसे किचन से फारिग हुए, उसके बाद अब शाम की फिक्र पड़ गई, अब शाम को क्या पकाए। सुभान अल्लाह, एक औरत की ज़िंदगी क्या है, खाना पकाना। हालांकि हज़रत आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दफ़ा देखा था खाने के उसके शुगल में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आयशा ये खाने के शुगल के अलावा कोई काम नहीं है। मुसलमान औरत के लिए आज क्या है? आज ये तो किसी को नहीं फिक्र कि हमारे ईमान की हालत क्या है, हमारे दीन की हालत क्या है। उसके मुकाबले में फिक्र किस चीज़ की है? अपनी स्मार्टनेस की, खाने पीने की। हालांकि खा खा के चाहे वज़न बढ़ाते जाएं, मगर हर सोच जो है उसका फोकस क्या है? सारे दिन में आप एक आम औरत की सोच का फोकस देखें किधर है, किचन। और कहीं सुभान अल्लाह कोई माशाल्लाह कोई दावत हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही काम से गए, तो कोई इतदाल नज़र नहीं आता हमारी ज़िंदगी में। हम इसलिए दुनिया में नहीं आए कि हम खाएं और मर जाएं, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना एक ज़रूरत है, ज़रूर खाएं आप, ये नहीं आपको मैं कह रही कि आप फाके करना शुरू हो जाएं, रात से आप कुछ ना पकाएं घरों में, मगर ये आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। आप इसलिए दुनिया में नहीं आई, चाहे कोई औरत है या मर्द है, ये नहीं मतलब है कि मर्द तो बस कुछ और काम करें। औरतों का बस काम क्या है? हांडी रोटी, यही हमारा उत्तर कि हांडी रोटी करो बस, तुम्हारा और क्या काम है। उम्मातुल मोमिनीन ने तो इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारी, और ना ही सहाबियात ने। उनको रोल मॉडल बनाएं तो उनकी ज़िंदगी देखें कितनी चूल्हे में गुजरती थी, उनके तो चूल्हे जलते ही नहीं थे महीनों, और हमारे चूल्हे तो सारा दिन नहीं बंद होते, और कईयों के घर में तो चाय का दौर जो चलता है तो कहते हैं 3-4 दफ़ा दिन में तो चाय ही बनती रहती है। चलो अब खाने से फरागा तो ही तो चाय, और चाय का बर्तन उतरता ही नहीं चूल्हे से, खुद पे कुछ तो रहम खाएं। क्या ये पेट को पालने के लिए दुनिया में आए? और इस भूख को तो जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ती ही जाएगी, ये तो नहीं ख़त्म होने वाली, तो पेट एक गढ़ा है, इसमें जितना डालते जाओगे और एक्सपेंड होता जाएगा ये। अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि हद से ना बढ़ो, और हद से बढ़ना यही है, फिर इसीलिए तो बीमारियां इतनी। तो हमारी देखें जब हम सुबह उठें तो अगर आपके जहन में सुबह उठते ही आता है आज क्या पकाएं, तो समझ लें कि अभी तक आपने कुरान से तो कुछ नहीं हासिल किया, अभी आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पे पहले दिन थे। ये आप हमारी सोच बदल जानी चाहिए। कहते हैं ख्वातीन को मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। वो शाना बशाना चलने का मतलब क्या होता है? कि वो भी कमाइयां करें। असल बात यह है कि हमारा आधी जो यानी मुसलमान उम्मत है जो औरतों पे मुश्तमिल है वो तो हंडी रोटी में पड़ी हुई है। दीन की तरफ तो उनको कोई समझ है ही नहीं, कोई ध्यान है ही नहीं, इसीलिए उम्मत का ये हाल है। फिर यही वो माएँ हैं जो बच्चों की तरबियत करने वाली हैं। ये तो हमें फिक्र है कि हमारे मुल्क तरक्की करें, ये औरतें निकलें बाहर और काम करें, जॉब्स करें, ये नहीं फिक्र है कि दीन का ईमान का हाल क्या, इखलाकियात का हाल क्या, मामलात का हाल क्या। आधे तो मामलात औरतों के हाथ में होते हैं ना। वो इसीलिए ये हालात जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि औरतें ही जब आपकी दीन नहीं जानती, मर्द तो नहीं जानते, औरतें भी नहीं जानती, तो फिर क्या हाल रहेगा। आधी पॉपुलेशन यानी आपकी बिल्कुल दीन से ना वाकिफ है, उनको खाने पकाने और इनसे ही फुर्सत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तो हम फॉलो करना चाहते हैं, खाने से उन्होंने मना नहीं फरमाया, लेकिन आप देखें कि उनके इंटरेस्ट खानों में कितने हुआ करते थे। तो खैर अब मैं आपको, क्योंकि आप लोगों के खानों पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मगर मैं ये कह रही हूँ सिर्फ कि थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें। आपकी फिक्रात क्या होनी चाहिए, दिन का आगाज किससे होना चाहिए, किस सोच के साथ, और जहन किस तरफ घूमना चाहिए। क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे कि मैं दुनिया फिर से क्या करके आई हूं, खाने बना बना के, मुझे इतनी रेसिपीज आती थी और मैं इतने चैनल देखती थी रेसिपीज के लिए, अब तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ऐसी चीजें भी आ गई हैं कि तो सिर्फ खाना ही पकाते जाओ और खाते जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमारी इस सोच को बदल दे, या अल्लाह हमारी तकदीरें बदल दे कि किचन से हम निकल आए तभी कुछ काम कर सकते हैं, हमारा तो जीना मरना ही किचन हो गया। तो वला तखौफी, और ना तुम सरकशी करो इसमें, कि ना तो तुम इसमें हद से ज़्यादा बढ़ो ना ही फिर ज़ाया करने पे आ जाओ। कि ज़ाया करना, अब ज़ाहिर है जब इतना बना लेंगे तो फिर ज़ाया ही होगा ना, या फिर वैसे वेस्ट करना फूड को, तो खाओ पियो और अल्लाह का हक भी तो अदा करो, शुक्र अदा करो, जो मिल जाए फिर उसके बाद इबादत में उसका हक अदा करने में जुट जाओ। फयहिल्ला अलैकुम गदबी, वरना क्या होगा, अगर तुम सरकशी नहीं छोड़ोगे, इसी तरह चलते रहे तो क्या होगा, तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा, गज़ब उतरेगा। यहाँ पे किस चीज़ के लिए गज़ब का कहा गया, अल्लाह ताला का गुस्सा किस चीज़ पे, किस वजह से, अगर तुमने ये बैलेंस नहीं रखा, बैलेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला का गुस्सा उतरेगा। अब ये किस चीज़ की बात हो रही है, खाने की, खाने में अगर बैलेंस नहीं रखा, खाने में चाहे तो बहुत ज्यादती करते हैं, बहुत इसराफ करते हैं, या नाशुक्रियां करते हैं, या नाकदरी करते हैं, या ज़ाया करते हैं, जो भी है, जहां पे भी हद से गुजरने में सब कुछ आ जाता है, तो फिर तुम पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। वमन यहलिल अलैहि गदबी, और याद रखो कि जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, फकद हवा, तो वो हलाक हो गया। फिर अल्लाह की नाराजगी लेकर इंसान जा कहां सकता है, कहाँ जाओगे फिर अल्लाह को नाराज करके। अगर तुमने बद इतदाली की, आज कमी तो नहीं करते, मैं तो कहती हूँ ज्यादती होती है फूड के मामले में, खाने पीने के मामले में इसराफ ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। जब हमारी जिंदगियां ही खाने पीने के लिए गुजर रही, वी लिव टू ईट, ईट टू लिव नहीं है, हम जिंदा ही इसलिए हैं कि हम खाएं, और हम सबका ये हाल है। तो इसलिए जैसे वो है ना कि जिस तरह के आपके ऑडियंस होते हैं उसी तरह की आपको बात भी करनी चाहिए। हमें से कोई अल्लाह ताला रहम फरमाए कि ऐसे नहीं कर रहा कि कोई फाकों में है, या कोई नहीं खा रहा, या किसी को इतना मुयसर ही नहीं आ रहा, बल्कि इसराफ करने पे हम लगे हैं। تو ہمارا حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اسراف. اگر ہم اپنے لیے لیں تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرا غضب نازل ہوگا اگر تم اس میں حد سے بڑھنے سے نہ ہٹے تو. وہ لوگ کیا کرنے لگ گئے تھے کہ اسٹور کرنا شروع کر دیتے تھے اگلے دن کے لیے. جب اللہ تعالیٰ روز کا روز دے رہے ہیں تو کیوں تم کر رہے ہو ایسا؟ تو ایسا انسان ہلاک ہو گیا جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا, اللہ کی نگاہ میں وہ ذلیل ہو گیا. اور جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو گیا اور پھر سوچیں کہ پھر اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا. اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ کچھ ذخیرہ کر کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کل کے لیے فکر نہ کرو, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم تو جاتے ہیں ساری زندگی کا رزق ہمیں آج ہی پتہ چل جائے کہ ساری زندگی کیا ملنا ہے اور اس کا انتظام ہم کر لیں. تو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق استعمال کرو, اس میں سرکشی نہ کرو. نہ تو اتنا پیٹ بھر لو کہ اللہ کی یاد آئی نہ, غافل ہو جاؤ اس سے, سستی طاری ہو جائے. کیونکہ دیکھیں قیامت کے دن وہاں پہ حشر کے میدان میں کچھ کھانا پینا تو ہوگا نہیں. آپ کو پتہ ہے اس دن انسان کو کتنی بھوک لگے گی؟ اتنی کہ اس سے زیادہ کبھی بھوک محسوس نہیں ہوئی. اور اس دن سب سے زیادہ بھوکے پتہ ہے کون ہوں گے؟ کسی کو معلوم ہے؟ سب سے زیادہ بھوکے اس دن وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے تھے اس دنیا میں. یہ انسان کہتا ہے ہائے اتنا کھا لیا اب تو سانس ہی نہیں آ رہی, ہائے اتنا کھا لیا کہ اب تو یہ ہو رہا ہے, ہائے اتنا کھا لیا اب تو الٹی آ رہی ہے. کیوں بھائی آپ نے اتنا ظلم کیوں کیا اپنے پیٹ پہ؟ سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے ایسے لوگ قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے غذا کے معاملے میں کیا فرمایا؟ سرکشی کرنے والے جو غذا کے معاملے میں سرکشی کرتے ہیں ان پر میرا غضب ٹوٹ کے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا ہے کہ دیکھو جو پھر میرے غضب میں آ گیا وہ گر گیا, اللہ کی نظر سے بھی گر گئے اور وہاں پہ بھی جو گرنے والا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جہنم میں گر گیا. تو اللہ کی حدوں کو نہ پھیلانگو, زیادتی نہ کرو, نعمت کا کی ناشکری نہ کرو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اور بے شک البتہ میں بہت بخشنے والا ہوں. کس کے لیے؟ کس کے لیے بخشنے والے اللہ تعالیٰ؟ یہاں تک بات مکمل ہو جاتی ہے اگر ہمارے آئیڈیاز کے مطابق جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہیں, اور بس غفور الرحیم کا مطلب کیا ہم سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا غفور الرحیم ہونا کیا ہے کہ میں تو بس یہ کروں کہ کچھ توبہ کی تسبیحاں کر لیں, کچھ استغفار کی تسبیحاں کر لیں, بس چند الفاظ کہہ دیے اور کچھ رو دھو بھی لیے, پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے, جو کرنا تھا ویسے ہی کرتے رہے. اب ہم نے توبہ تو کر لیا, اب ہمیں لائسنس تو مل گیا ہے, اب آگے ہماری جو مرضیاں ہم کریں گے. تو ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ غفار کس کے لیے؟ دیکھیں یہاں پہ کس کے لیے غفار کتنی واضح آیت ہے نا اس میں, تو میں سوچتی ہوں کہ مجھے تو کچھ زیادہ بتانے کی بھی نہیں ضرورت. اب آپ ماشاءاللہ خود ترجمہ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, آپ کو خود سمجھ میں آتا ہے. لمن تاب, لیے اس کے جس نے توبہ کی. کون سی توبہ؟ یہ جو جیسے میں بول رہی ہوں دو چار تسبیحاں, نہیں. توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا, یعنی جو پلٹ آیا. کوئی پلٹا ہی نہیں, کوئی چینج ہی نہیں لے کر آیا, کسی نے یو ٹرن ہی نہیں لیا, پھر توبہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ یہ توبہ تو کاذبین کی توبہ ہے نا, یعنی جھوٹوں کی توبہ ہو گئی. پھر یہ چند الفاظ ہیں بس منہ سے کہہ دیے. اور دیکھیں جب پلٹنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں کیا ہے, آپ پہلے ارادہ کریں گے نا کہ میں پلٹوں, اس کے بعد پھر آپ کوئی شرمندگی ہوگی کہ بھئی اس راستے پہ میں جا رہی تھی, یہ راستہ صحیح نہیں تھا, اب میں مجھے ندامت ہو رہی ہے. تو توبہ نام کس چیز کا؟ ندامت کا, شرمندگی کا, इसमें इरादा ज़रूरी है ना, कि आपका इरादा हुआ, आपने सोचा पहले, देखो ये मैं काम जो कर रही हूँ ये सही नहीं है, कुछ काम ये अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम है, आपको शर्मिंदगी हुई, आज तक मैं करती रही, मैंने क्यों ऐसा किया, फिर आपने इरादा किया मैं बस अब इस काम को छोड़ रही हूँ, अब मैं पलट आऊँगी, अब मैंने नहीं ये करना, फिर आपने अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तग़फ़ार की, फिर अल्फाज ज़ुबान पे आए, शर्मिंदगी भी थी, फिर रोना धोना भी हुआ, फिर माफ़ी भी तलब की आपने, उस गुनाह को छोड़ दिया कि अब नहीं मैंने करना, ये बहुत हो चुका, ये है तौबा। फिर उसके बाद गलती से दोबारा हो जाए तो कोई बात नहीं है, फिर से तौबा कर ले, लेकिन ये क्या तौबा हुई कि अभी कुछ इरादा किया ही नहीं है, बस ऐसे ही बस इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बड़ी तस्बीहें आज मैंने कर ली, ये कौन सी तौबा है, ये तौबा तो नहीं होती। तो अल्लाह ताला गफ्फार किसके लिए है? और अच्छा, गफ्फार में भी और गफूर में भी फर्क है, गफूर है अल्लाह ताला मगफिरत फरमाने वाला, और जबकि गफ्फार क्या है कि जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं उनको अल्लाह ताला गुनाहों से बहुत ज्यादा बख्शने वाला, उनकी बख्शिश करने वाला। गफूर में भी बख्शिश है लेकिन गफ्फार में हद से बड़ी भी, हद से बड़ी भी, यानी जिनके लिए अजाब बस फैसला हो चुका अजाब का, उनको भी अल्लाह ताला माफ कर देता है, उनके गुनाहों को भी दरगुजर कर देता है। अल गफर किसको कहते हैं? किसी चीज को छुपा देना, छुपा देना किसी चीज को, तो गुनाहों को छुपा देता है, हद से ज्यादा भी गुनाह किसी के हों उनको भी छुपा देता है, बहुत ज्यादा है छुपाने वाला, बख्शिश करने वाला, माफ करने वाला, यानी माफ भी करेगा छुपा भी देगा लोगों से, लोगों को पता ही नहीं चले। इंसान उस दिन अपना नामा आमाल देखेगा ना, हाय ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, हाय अब इनका क्या होगा, अल्लाह ताला उनको ढांप देंगे, छुपा देंगे, ये है अल्लाह की शान गफ्फारी। अल्लाह तू गफ्फार है, तू हमारे गुनाहों को ढांप देना, बख्श देना। तो पहले लेकिन इसमें क्या होता है, नदामत होती है, फिर इरादा होता है, फिर उस इंसान पलट आता है, आमना और उसके बाद ईमान लाया, ठीक कर लिया अपने आप को, वह आमिला सालेहन और उसके बाद साले अमल करता है, फिर नेकी के रास्ते पर आ जाता है, छोड़ छाड़ देता है उन गुनाहों को, इन बुराइयों को जिनमें पड़ा हुआ था, साले अमल करने लगता है, सुमहतदा फिर हिदायत पाई। और यहाँ पे हिदायत का मफहूम जो किया गया है, ये कहा गया है कि यहाँ पे हिदायत के माने हैं इस्तकामत, यानी फिर उस पर जमा भी रहा, अब अपनी जिंदगी के अंदर अगर तब्दीली लाया है तो अब ये सोच के लाया कि अब मैंने छोड़ना नहीं है, ये उसके लिए है अल्लाह ताला गफ्फार, इन्नी ला गफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन थुम्मा हतदा। ये क्या चार चीजें हैं यहाँ पे, ये चार नुकाती प्रोग्राम है, इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो फिर अल्लाह गफ्फार है, और खाली तस्बीहां करते रहोगे जिसमें ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई इरादा है अपने आप को तब्दील करने का, ना ही कोई अपने गुनाह का कोई एहसास है कि मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ, बस तस्बीहां कर करके जमा करते जा रहे हैं, वो कोई तौबा नहीं है। तो पलट भी आओ, ईमान भी ले आओ, अमले साले भी करो, इस्तकामत भी रखो। और इस्तकामत किस तरह से आएगी, इंशाअल्लाह ताला इस्तकामत आएगी कुरान से जुड़ने से। आप देखते हैं ना कि जब आप कुरान को पढ़ते हैं उसके बाद एक हफ्ता जब गुजरने लगता है तो आपका दूसरे सबक से पहले थोड़ी फिर दिल पे गर्द पड़ने लगती है, गुबार आने लगता है दिल पे, फिर उसके बाद आप पढ़ लेते हैं फिर सीधे हो जाते हैं, कि फिर किसी और तरह पढ़ते हैं, फिर दोबारा आपको ट्रैक पे आ जाते हैं, तो ये आपको जमाए रखता है, ठीक है। तो ये कुरान के साथ जुड़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो हिदायत का ये सफ़र जो है ना, मुसलसल एक सफ़र है, इसमें ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बस हिदायत का रास्ता मैंने अपना लिया, अब मुझे कोई डर नहीं है, बस अब मैं यूं ही चलती रहूँगी, ऐसी बात नहीं है, ये ज़िंदगी में चलता ही रहेगा मरते दम तक। क्योंकि देखो बीच बीच में हम कोई कामिल तो है नहीं, बीच में फिर गुनाह होते हैं, फिर गलतियां होती हैं, फिर अल्लाह की रहमत है तो उसके आगे फिर हम झुक जाते हैं, फिर इतराफ़ करते हैं, फिर बख्शिश मांगते हैं। वो तो पहले ही बख्शने के लिए तैयार है, वो तो कह ही रहा है कि मैं गफ्फार हूँ। लेकिन जब तक बंदा कोशिश ही नहीं करता, तब तक वो मगफिरत उसको फ़ायदा तो नहीं देगी ना। उसकी तो मगफिरत है, आपकी कोशिश ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं तौबा करना, तो क्यों क्यों कैसे ढांपेगी वो आपको। तो ये देखें कि सुम्मा अहतदा का ये भी माना है कि जो नेकियां इंसान करता है उनसे फिर हिदायत का रास्ता खुला रहता है। तो नेकियां करते रहें। अब जब इंसान से कोई गलती होती है फिर उसको शर्मिंदगी होती है, वो आजी करता है, अपने रब के सामने झुक जाता है, फिर अल्लाह ताला का दामन गफारी, उसकी रहमत उसका दामन थाम लेता है, नए सिरे से नया ईमान लेकर आता है, नेक अमल शुरू कर देता है, हिदायत के रास्ते पर बिल्कुल सही चलना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला फिर उसको माफ़ फरमा देते हैं, उसके बड़े से बड़े गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और हिदायत का रास्ता, एक बात याद रखें, हमारी मर्ज़ी का रास्ता नहीं है। जो मेरी मर्जियाँ होंगी वो हिदायत का रास्ता बन गया, मर्ज़ी मैं अपनी चला रही हूँ और कहूँ कि ये हिदायत का रास्ता, इस पे मैं चल रही हूँ, नहीं, ये कौन सा रास्ता होगा, जो आप चाहती हैं या जो मैं चाहती हूँ, नहीं, जो रब का बताया हुआ रास्ता है। तो इस पे चलने के लिए फिर उसी से पूछना पड़ेगा ना कि किस कौन सा रास्ता है वो। तो लौटने का ये सफ़र तो बार बार जारी रहेगा। देखिए इसमें कभी मायूस नहीं होना, गलती होगी मगर हम फिर लौटेंगे, फिर पलटें, तो तौबा का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। और जो इस्तकामत इख्तियार करते हैं, तो सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ताला ने उन्हीं के बारे में कहा है, जो अल्लाह पर ईमान लाए और इस्तकामत इख्तियार की ना, उनके पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनको कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मेरे सामने वो आयात तो नहीं है, मैं अपना एक मफहूम उसका सिर्फ बता रही हूँ आपको। तो इस्तकामत का मामला जो है ना, जमे रहने का मामला, बड़ा डेलिकेट मामला है, क्योंकि हर वक्त खतरा मौजूद है कि कोई इस रास्ते से किसी वक्त भी हट सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था ना कि सिरात मुस्तकीम के हर रास्ते पर, हर दरवाजे पर शैतान कोशिश करता है कि इसको वापस खींच लूँ। उसमें भी एग्जिट्स है ना, सिरात मुस्तकीम में भी शैतान कोशिश करता है कि एग्जिट ले ले इंसान। तो लेकिन इंसान पलट पलट के वापस अल्लाह की तरफ आता है, गलती हो जाती है, उतर जाता है एग्जिट पे, फिर वापस चढ़ता है सिराते मुस्तकीम पे। तो यही तौबा है, यही पलट आना है। जो भी वापस आ जाता है, अपने आप को फिर इस रास्ते पे जमाता है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला गफ्फार है। और इंसान को अगर अल्लाह ताला की मगफिरत के ऊपर भरोसा ना हो, तो कभी भी नहीं लौट के आ सकता। हम यकीन करते हैं कि अल्लाह ताला गफ्फार है, जितने भी आगे निकल जाओ, अगर पलट आओगे, वापस आ जाओगे, और वापस आने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है ना, किसी भी गलत रास्ते पे आप चले जाएं तो वापस आने के लिए उतना कोई तो एफर्ट करनी पड़ेगी, कि उसी रास्ते पे चलते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए आपने अगर गलत रास्ता ले लिया, क्या करते हैं फिर, यू टर्न लेते हैं ना कहीं से ढूंढते हैं, जब आप लंबा यू टर्न लेकर आना पड़े, वापस उसी जिस रास्ते से आए थे उसी पे वापस चले जाते हैं, वापसी का सफर करना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं होता कभी भी कि आप कहें अच्छा चलो मैं पलट आई हूँ, मैं वापस हो गई हूँ, और उसी रास्ते पे आगे निकलते जाएं, ऐसे तो नहीं कभी होता ना। तो तौबा है यू टर्न लेना। तो अगर आप वापस पलटे ही नहीं, उसी रास्ते पर चलते चले गए, और आप कह रहे हैं मैं तो पलट गई, मैं तो पलट गई, कहने से थोड़ी आप पलटेंगे जब तक आपके कदम वापस ना मुड़े। समझ आ गई अब आपको तौबा की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे दिल पर एक गुबार सा आ जाता है, फिर मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ तो वो गुबार हट जाता है। ये किस हस्ती की बात हो रही है जिससे किसी किस्म की कोई गलती सरजद नहीं हुई थी, और हमें किस कदर कसरत के साथ फिर इस्तग़फ़ार करनी चाहिए हमारे दिल देखे पता नहीं कितने मैले हो चुके। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़ुबान से इस्तगफार करता है मगर गुनाहों पर इसरार करता है, गुनाह नहीं छोड़ने बस इस्तगफार की तस्बीहें ही करते रहना ज़ुबान से, तो वो शख्स अपने रब का मजाक उड़ाता है। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि सोच समझ के इरादे के साथ तौबा करनी है इंशाल्लाह। वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, और क्या चीज़ तुझे जल्दी ले आई तेरी कौम से या मूसा। अब यहाँ पे बात हो रही है, ये जो पीछे बात हुई ना, अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 80 में कि हमने आपको तूर की दाएं जानिब का वादा दिया था, अब उसकी ज़रा सी डिस्क्रिप्शन हो रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम तूर की तरफ जा रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ पहली मुलाकात हुई थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम शौक मुलाकात से बेताब है, एक तो मुलाकात का शौक है, दूसरी शरीयत भी मिलनी है, इसकी भी ज़रा और भी शौक़ बढ़ गया। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, देखिए दो इसमें रिवायात आती हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देती हूँ। एक तो ये आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को भी लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने कौम को कहा कि भाई ठीक है तुम आप बाद में आ जाना, ज्वाइन कर लेना मुझे, और तूर पे तो नहीं मगर पीछे पीछे तुम आ जाना, मगर मैं आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे जाके मुलाकात करनी है अल्लाह ताला से। दूसरा ये आता है कि इनके साथ इन्होंने पूरी कौम तो नहीं लेकिन 70 लोगों को, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है, 70 लोगों को उनमें से चूज़ किया जो उनके बड़े बड़े अच्छे बुज़ुर्ग नेक लोग थे, और उनको लेकर चले। अब जब उनको लेकर चले तो अब ख़ुद तो इतना शौक़ था हम कलामी का अल्लाह ताला से कि इतनी बेचैनी थी ना अंदर कि खुद आगे आगे भाग गए कि मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ अल्लाह ताला के साथ जाके बात करता हूँ, उनको कहा कि तुम आ जाना पीछे ना। तो ये दोनों ही रिवायात आती है, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे, अब ये देखें ये भी एक बात होती है ना कि ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला से बातचीत करनी है तो सोचेंगे कितना शौक़ होगा मूसा अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला ने पूछा वहाँ पे भी, हालांकि अल्लाह ताला सब चीज़ जानते हैं, मगर देखें अल्लाह ताला ने सवाल किया क्या चीज़ लाई तुझको तेरी कौम से ए मूसा, यानी आप जल्दी जल्दी अपनी कौम से भी आगे आगे पहले पहले क्यों आ गए, जल्दी करके क्यों आ गया। काला, तो मूसा अलैहिस्सलाम अब इसका जवाब देते हैं, हुम उलाई अला आसारी, हुम उलाई वो लोग अला आसारी, वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे निशाने कदम पे आ रहे हैं, वो मुझे फॉलो कर ही रहे हैं कि वो भी मेरे पीछे पीछे हैं। आजिल तो इलेही का रब्बी लितर था, मैंने तो अल्लाह ताला जल्दी इसलिए की कि तू मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तू खुश हो जाए। इंसान को जब किसी को राज़ी करना होता है ना तो उसके हुक्म के ऊपर जल्दी करता है, मैं जल्दी जल्दी करूँ मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी आया हूँ अल्लाह ताला। यानी अभी टाइम तो नहीं हुआ, मुलाकात का अभी तो नहीं था, अब वो जल्दी जल्दी आ गए, तो अल्लाह इसलिए कि आप खुश हो जाएं, आपको खुश करने के लिए। तो मुलाकात का शौक़ ऐसा था, इतना शौक़ था दिल में मुलाकात का कि कौम को भी पीछे छोड़ दिया। तो या अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, तुझे राज़ी करने का जो शौक़ है, तेरी मुलाकात का जो शौक़ है। और सच्ची बात यह है कि इंसान के दिल में जिस चीज़ का शौक़ होता है ना, वो शौक़ भी रहे उसे बैठने नहीं देता, उड़ाता है उसको, शौक़ उसको आगे लेके जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था ना कि शौक़ तो मेरी सवारी है। देखिए ये ऐसी चीज़ है ना, जब इंसान को शौक़ लग जाता है ना किसी चीज़ का, तो सवारी है ये, जिस पे सवार होकर इंसान फिर उड़ता ही चला जाता है। आप लोग कभी सोचते हैं कि भाई किस तरह लोग दीन का काम कैसे कर लेते हैं, घर का भी करते हैं, ये शौक़ की बात होती है। ये शौक़ वो सवारी है जो फिर इंसान की नींद भी उड़ जाती है शौक़ में, और शौक़ ऐसी चीज़ है फिर हर चीज़ से आगे फिर इंसान उस चीज़ को रख देता है जब शौक़ लग जाए। देखिए आप लोगों के भी तो कुछ शौक़ होंगे ना, या कोई शौक़ लग जाता है, मसलन कुछ खाने का शौक़ है, अब उसके लिए आप इतनी दूर भी ट्रैवल करके जाते हैं। किसी को शॉपिंग का शौक़ है, उसको कोई आधी रात को भी बता दे कि फलां जगह पे सेल लगी हुई है, वो वहाँ पे भी उठ के खड़े हो जाते हैं जाके। कई जगह पे होता है ना सुबह सवेरे जाके, वैसे सुबह सवेरे फजर के लिए नहीं उठेंगे, लेकिन वो शॉपिंग का जब वो कह देंगे ना कि सुबह सवेरे यहाँ पे सेल है, तो रात से ही जाके वहाँ पे लोग टेंट लगा के बैठ जाते हैं। तो ये शौक़ की बात होती है ना, शौक इंसान को ना फिर सोने देता है ना चैन से बैठने देता है, बस ये शौक लग जाए ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी है, इतनी प्यारी दुआ है, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे चेहरे पर नजर डालने की लज्जत और तेरी मुलाकात के शौक का, मुझे शौक लग जाए तेरी मुलाकात का, जैसे मूसा अलैहि सलाम को लग गया। फिर शौक शौक के अंदर ऐसे हुए कि आ गए ही आ गए अल्लाह अकबर। एक ने रिवायत पढ़ी मुझे बहुत ही पसंद आई, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बारिश होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ उतार दी हत्ता कि बारिश आपके जिस्म मुबारक पर पड़ने लगी। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आपने ये क्यों किया? आपने फरमाया ये बारिश अभी अभी मेरे रब के पास से आई है। सुभान अल्लाह, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि ये अभी अभी मेरे रब के पास आई है। जो शौक है ना, शौक अल्लाह के पास से कोई चीज आई है। या अल्लाह हमें भी तेरी मुलाकात के ऐसे शौक लग जाए कि हम भाग भाग के काम करें तुझे राजी करने के, भाग भाग के और हम थके ना। और अल्लाह जब आपको शौक लग जाता है ना थकावट भी नहीं होती। आप देखें जिनको कुकिंग का शौक है तो वो सारा दिन खाने पकाते रहेंगे और थकते ही नहीं है क्योंकि शौक लग गया ना। तो अल्लाह हमें अपनी मुलाकात का ऐसा शौक दे दे, अपने कुरान का ऐसा शौक दे दे, हम पढ़ पढ़ के थके ही ना और वाकई यकीन करें थकावट नहीं महसूस होती। गला भी दुखने लगता है लेकिन वो महसूस नहीं होती, उसमें भी लज्जत आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक रखता है अल्लाह भी इससे मुलाकात का शौक रखता है, और जो अल्लाह ताला से मुलाकात को नापसंद करता है अल्लाह भी इससे मुलाकात को नापसंद करता है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा था या रसूलल्लाह हम तो मौत को नापसंद करते हैं, हमें तो मौत पसंद नहीं है, यानी मौत ही तो है उसी उसी से तो फिर उसके बाद ही तो अल्लाह से मुलाकात होगी, ज़िंदगी में थोड़े हो सकती। तो हम तो मौत को पसंद नहीं करते, तो फिर क्या हमें, यानी मुराद क्या थी उनकी कि तो क्या हमें शौक नहीं है फिर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बात नहीं है, लेकिन जब मोमिन के पास मौत का वक्त आता है तो उसको अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी करामत की बशारत दी जाती है, उस वक्त उसको इससे ज़्यादा और कोई चीज़ महबूब नहीं होती जो उसके सामने आने वाली है। बस जो अल्लाह की मुलाकात से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात से मोहब्बत रखता है, यानी फिर जब आके फरिश्ते उसको कहते हैं ना अल्लाह की रज़ा की तरफ चलो उसकी रहमत की तरफ चलो, तो वो कहता है कि बस मुझे अब ले जाइए, इतना उसको शौक आता है ना। और काफिर के पास जब मौत का वक्त आता है या ऐसा इंसान जिसने कुछ नहीं किया हुआ मुजरिम, जैसे सूरह मोमिनून में आता है ना कि जो मुजरिमीन है उनके साथ भी ये होता है, तो वो आके उसको अल्लाह के अजाब की उसकी सजा की खबर देते हैं फरिश्ते आके, उस वक्त उसको इससे ज्यादा नापसंद चीज, मौत से ज्यादा नापसंद चीज कोई नहीं होती जो उसके सामने आने वाली है। वो कहता है मरना नहीं है मैंने, क्योंकि उसको पता है आगे अजाब है सजाएं हैं, तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह भी फिर उससे मुलाकात नहीं करना चाहता, वो भी उससे मुलाकात को नापसंद करता है। तो या अल्लाह हमें भी तेरी मुलाकात के ऐसे शौक लग जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन, आमीन। तो ये शौक़ की बातें हैं, ये शौक़ का सफ़र है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि दूसरों से आप पूछते हैं आप कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे ये करते हैं, बहुत सारे लोग सवालात करते हैं ऐसे, तो बस ये सफ़र शौक़ का सफ़र है। और वाकई दुनिया में कोई भी काम शौक़ के बगैर नहीं हो सकता। वाकई आपको काम वाकई लगन से करना चाहते हैं ना, तो जब तक आपके दिल में उस काम की मोहब्बत पैदा ना हो जाए ना, तो फिर उस वक्त आप कर नहीं सकते। फिर वाकई थकावटें भी होंगी, फिर किसी दिन बहाने भी होंगे, फिर किसी दिन मेहमान भी आ गए, तो किसी दिन फलां काम हो गया, तो किसी दिन ये हो गया, क्योंकि जाहिर है दिल में मोहब्बत नहीं होती ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी बन के आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन जब शौक लग जाता है उसका मैदान ही अलग है, उसकी तो क्या ही बात है। जब आपको शौक़ लग जाएगा ना आपको खुद ही पता चल जाएगा मुझे शौक़ लग गया, फिर सारे ही काम हो जाते हैं, वो फिर बस कुछ चीज़ की परवाह नहीं रहती। ये एक दीवानगी है, जो दीवाने को देखा ना आपने, उसको फिर कुछ सूझता नहीं है ना, उसको भूख लगती है ना, उसको नींद आती है ना, कुछ भी नहीं महसूस होता, ये मोहब्बत की कमी है हमारे अंदर कि जिसकी वजह से हम ऐसे नहीं हो पाते, और हर चीज छोटी छोटी चीज हो जाती है वो भी हमारे सामने इतनी बड़ी होकर नजर आती है। ये क्या करें, ये काम आ गया ना, ये चीज हो गई, अब हम क्या करें। तो फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हम क्या करें, फिर रास्ते खुद ही निकालने आ जाएंगे आपको। फिर रातों को नींद ही नहीं आनी, फिर किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो इस दीवानगी को पैदा करने की कोशिश करें। ये दीवानगी मोहब्बत से होती है ना, जब मोहब्बत की इंतहा हो जाए, और जब जितनी मोहब्बत में कमी होगी फिर शौक भी उतना ही कम होगा। तो ये मोहब्बत शौक में बदलती है। हर इंसान में शौक का लेवल मुख्तलिफ होता है, ये नहीं कि आपके अंदर बिल्कुल ही नहीं होगा, मगर डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, क्योंकि मोहब्बत के लेवल्स डिफरेंट हैं।